हज़रत अली कहते हैं कि अगर उफ़ से भी छोटा कोई कलमा होता ना तो अल्लाह ताला उससे भी मना कर देते कि हम माँ बाप के सामने वो भी ना बोले। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालदैन के हक़ में बेहतरीन सदका जारिया बनाए और हम उनका हक़ अदा कर सकें। आयत नंबर 41, वलकद सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआनि लियज़्ज़क्करू वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा। हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आए। सच ऐसे नहीं लगता कि एक माँ की तरह कुरान की हर आयत हमसे यही तकाजा करती है कि संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ, मगर वो हक से और ज़्यादा दूर ही भागे चले जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कि बनी इसराइल में लफ्ज़ कुरान बार बार आ रहा है, और कुरान अगर समझ में ना आए तो रोएं। इमाम इब्ने तैमिया एक दुआ किया करते थे कि या मौलिम अल इब्राहिम अल्लिमनी, या मुफ़हिम सुलेमान फ़हिमनी। और ये आयतें पढ़ पढ़ के कई लोग रोते थे, अगर कुरान की कोई आयत ना समझ आए तो कहते थे इसका मतलब कि फिर हम इन लोगों में हैं कि जिनको कुरान समझ नहीं आता। अच्छी नीयत से अगर आप कुरान पढ़ें आपको ज़रूर समझ आएगा। अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने और समझने वाला बना दे और कभी इससे भागे ना। कुल लौ काना मा हुआ लिहतुन कमा यकूलून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अगर अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी होते जैसा कि ये लोग कहते हैं तो मालिक अर्श के मुकाम पर पहुंचने की ज़रूर कोशिश करते। दुनिया में एक बादशाह दूसरे बादशाह का की बादशाहत लेना चाहता है ना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सोचो ज़रा, ये कायनात का निज़ाम जो इतना खूबसूरत चल रहा है ये क्यों चल रहा है? क्योंकि खुदा एक है, पाक है वो और बहुत बाला बरतर है इन बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। इसकी पाकी तो सातों आसमानों ज़मीन और वो सारी मखलूकात जो इनके बीच में हैं वो बयान कर रही हैं जो आसमानों ज़मीन में हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इसकी हम के साथ इसकी तस्बीह न कर रही हो, मगर तुम इनकी तस्बीह नहीं समझते। हकीकत है कि वो बहुत बड़ा बुर्दबार और दरगुजर करने वाला है। सहाबा कराम खाने के लुकमों में से सुभान अल्लाह की आवाज़ें सुना करते थे, ये मौजज़ा था। तो ये कायनात की एक एक चीज़ बोलती है, हद तक कि आपको पता है कि बेजान चीज़ें, दरख्तों के तनों में से भी अल्लाह के नबी के दौर में आवाज़ें आती थी। रोने की आवाज़ आई उस दरख्त के तने से जिसको टेक लगा कर पहले अल्लाह के नबी खुतबा देते थे, फिर जब मिंबर बन गया तो आप वहाँ से उठ के आए तो वह तना रोने लगा। आपने कहा कल तक इसके साथ चूँकि ये बातें हो रही थी तो अब इसको इसकी वजह से अफसोस हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें भी कुरान से इतनी मोहब्बत दे दे कि हम ज़रा से इससे जुदा हों तो हम भी रोने लगें। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखरत पर ईमान न लाने वालों के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं और इनके दिलों पर ऐसा खिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ नहीं समझते और इनके कानों में बोझ है। कहीं इस वक्त आप में से तो किसी को बोझ नहीं लग रहा ये सुनना? नींद तो नहीं आती? गन बोझल, क्योंकि कुरान सुनकर मज़ा उसको ही आता है जिसका दिल इसमें बड़ा होता है। ये ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। लोग कहते हैं थकन होती है, मैं हैरान होती हूँ। लोग कहते हैं नींद आती है, मैं हैरान परेशान हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि फिर शायद पढ़ने वाले को कुछ नहीं होता, सुनने वालों को होता होगा। आप इसमें अंदर डूब जाते हैं और वाकई पढ़ने वाले की तवज्जो ज़्यादा होती है सुनने वाले से, लेकिन फिर भी खुद को कोशिश करें। अगर आपको लगता है टेक लगाने से नींद आती है, टेक छोड़ दें और जिस तरीके से आपका फोकस ज़्यादा हो उस पर करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप इसको अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करेंगे। फिर फरमाया वाइज़ा ज़िक्र तरबक फिल कुरआनी वहदा, और जब तुम कुरान में अपने एक ही रब का जिक्र करते हो तो वो नफरत से मुंह फेर लेते हैं। नाउस बिल्ला, कई लोग कहते हैं ये सिर्फ अल्लाह की बातें करते हैं और किसकी करें भाई? नहीं, बुज़ुर्गों की नहीं करते। ये कहते हैं नहीं, बुज़ुर्गों को वसीला ना बनाओ, अल्लाह से मांगो। मक्का वालों का क्या मसला था? वो यही कहते थे, उनको अल्लाह का जिक्र बुरा नहीं लगता था, लेकिन कहते थे सिर्फ एक अल्लाह का ना करो। तो हमें तो अल्लाह इसी की तौफीक दे कि हम सिर्फ एक अल्लाह का जिक्र करें। नहनु आलमु बिमा यस्तमेऊ नबी ही, हमें मालूम है जब वो कान लगा कर तुम्हारी बात सुनते हैं तो दरअसल क्या सुनते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ गलतियाँ चुनने आते थे, उनका तस्करा, और जब बैठ कर बाहम सरगोशियाँ करते हैं तो क्या कहते हैं? तनकीद करते थे और उस पर तबसरे करते थे। सुना था ये क्या कहा, सुना वो क्या बात हो गई, ये क्या हुआ। जो हिदायत के लिए नहीं आता वो फिर ऐसी चीज़ों को ही देखता रहता है। ये जालिम आपस में कहते हैं ये तो एक सहरज़दा आदमी है जिसके पीछे तुम लोग जा रहे हो, देखो कैसी बातें हैं जो ये लोग तुम पर छांटते हैं, ये भटक गए और इनको रास्ता नहीं मिलता। याद रखिए सबको कुरान पढ़कर हिदायत नहीं मिलती, जो लेने आएंगे ना वो मिलेगा। आप इसको एक मिसाल से समझें, कीवी स्टोर है ना, लाखों चीज़ें होंगी वहाँ, आप क्या लेकर आते हैं जो लेने जाते हैं? आप अपने बैग में वही चीज़ें डालते हैं जिसकी तलब होती है। बिल्कुल इसी तरह कुरान तो एक ख़जाना है। कुरान को भी आप किसी स्टोर से तशबीह दे लें अगर, तो इसमें से आप मैं अपने बैग में सिर्फ वो डाल के जाएंगे जो मुझे चाहिए था इधर से। हिदायत के लिए आए थे, अपनी इसलाह के लिए आए थे, यही लेंगे। और अगर सिर्फ तनकीद बातें, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, उसकी बात करने वाला, कहने वाला, आने वाले स्टाफ, ये वो, तो वो यही बातें अपनी पिटारी में डाल के ले जाएंगे। हिदायत नहीं मिलेगी और सब कुछ मिल जाएगा। और अल्लाह ताला हमें इस तरह ना करने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमें ऐसे रवैये से बचा के रखे। फिर इसके बाद फरमाया अल्लाह ताला आगे मज़ीद इनकी कुछ और बातों का तذکرہ फरमाते हैं, वकालु ऐज़ा कुन्ना इज़ामं वरुफ़ाता। और वो कहते हैं क्या जब हम, ये मक्का वालों की बात है, असल में आखिरत पे ईमान नहीं था ना, तो इस तरह की बातें करते थे। वो कहते हैं जब हम सिर्फ हड्डियाँ और खाक हो जाएंगे, यानी जब हम सिर्फ हड्डियाँ और खाक होकर रह जाएंगे, तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे? इनसे कहो तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ, या इससे भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ जो तुम्हारे जहन में कबूल है हयात से बेहतर हो, फिर भी तुम उठ कर ही रहोगे। आज लोग कहते हैं हम तो जला देते हैं, फिर कैसे आएंगी लाशें बाहर, और फिर मट्टियों में कब्र में तो सब मट्टी हो जाती है, डिकम्पोजिशन हो जाती है। अल्लाह कहता है तुम कुछ भी बनो, मैं तुम्हें उठा के खड़ा कर दूंगा। वो ज़रूर पूछेंगे वो कौन है जो फिर हमें ज़िंदगी की तरफ पलटा कर लाएगा। जवाब में कहो वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया। वो सर हिला हिला कर पूछेंगे अच्छा तो ये अब होगा कब? देखिए जब किसी बात पे यकीन नहीं होता ना, तो एतराज़ बुरा एतराज़, बात में से बात निकाल, अच्छा फिर आज भी आप देखिए किसी को आप दीन की दावत दें अगर तलब नहीं है ना, तो बात फिर वो नहीं है, अब नहीं वो फिर उसके बाद अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मत वक्त ज़ाया करें। जिसने नहीं मानना होता ना, देखिए नबी के साथ कितनी बहस कर रहे हैं, ये बात करें इसका ये जवाब उसकी बात, और जैसे कंधे उचकाते हुए च्युइंगम जमाते हुए उठ के चला देती, मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। तो तलब होगी तो हिदायत मिलेगी, वरना तो नबी की बात से भी फ़ायदा नहीं होगा। खैर अच्छा तो ये होगा कब? तुम कहो क्या जब वो करीबी आ लगा हो, जिस रोज़ वो तुमको पुकारेगा तो तुम इसकी हमद करते हुए इसकी पुकार के जवाब में निकल आओगे, और तुम्हारा गुमान उस वक्त ये होगा कि हम बहुत थोड़ी देर इस हालत में रहे। आप कहते हैं कि मरते इंसान टाइम एंड स्पेस के हिसाब से बाहर चला जाता है, मरने के बाद जैसे सोते हैं तो हमें टाइम का एहसास नहीं होता ना, इस तरह मरने के बाद नहीं होगा। तो लोग सोचेंगे कि बस अब कुछ नहीं है ख़त्म, लेकिन जिनकी रूहों को अजाब, तो उनको ऐसा नहीं लगेगा, बल्कि ये आखरत के मामले हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। बस ये दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला हमारी आखरत को अच्छा कर दे। आगे एक बड़ा ही अहम हुक्म है, इसको हाईलाइट कीजिए, ये भी आयत तदब्बुर है आज के इस बारे की, वकुल इबादी यकुलुल्लती हिया अहसन इन्न शैतान यनज़ु बैनहुम इन्न शैतान काना लिल इंसानी अदुव्वं मुबीना। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कहो कि ज़ुबान से वो बात निकाला करें जो बेहतरीन हो, अच्छी बातें करें, ज़ुबान पे काबू रखने की बात है। हकीकत यह है कि अगली आयतों में हम शैतान की साजिशें पढ़ने वाले हैं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार हमारी ज़ुबान है। हम जब भी कोई बात करते हैं, अच्छी नीयत से करें, बुरी से करें, प्यार से करें, गुस्से से करें, शैतान उसको उचक के ले जाता है और दूसरे को पता नहीं किस रंग की करके पेश करता है। हदीस में कि खामोश रहो, निजात पा जाओगे। बात छोटी सी बात बहुत बड़ा फितना बनती है, और ख़ास तौर पे दीनदारों की बातों को तो लोग ऐसे छानते हैं जैसे आटे को छलनी में छानेंगे। तो बहुत सोच के बोलना चाहिए। गीबत सुनेंगे, गीबत करने को दिल चाहेगा, कुरान सुनेंगे, कुरान सुनने को दिल चाहेगा। अपनी ज़ुबान को खामोश रखने का तरीका इसको ज़िक्र से तर कर लीजिए। कहते हैं कि है तोले भर की ज़ुबान, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों को कुतर जाती है। बहुत सारी अहादीस हैं इस बारे में कि जहन्नुम में के करीब करने वाली चीज़ ज़ुबान है। आप देखिए बात, लोग ऐसे ही कमेंट करते हैं आते में जाते में, जैसे वो हवाई फायरिंग नहीं होते शूटिंग कर जाते हैं लोग, इसी तरह कमेंट करते हैं। मत कीजिए, ये बुलेट बनकर बातें लोगों के दिलों में जाती हैं और बाज़ दफ़ा लोगों के दिल टूट जाते हैं। आप ऐसे ही कहते हैं, आप कहते हैं मजाक किया था, किसी को मोटी कह दिया, किसी को छोटी कह दिया, किसी को पतली कह दिया, किसी को मुनाफिक कह दिया, कुछ कह दिया। तो ये ना करें। किसी ने कहा कि जब तक मैं बोलता नहीं हूँ तो अल्फाज मेरे ग़ुलाम होते हैं, और जब मैं इनको मुँह से निकाल देता हूँ तो मैं इनका ग़ुलाम बन जाता हूँ। तो बोलो फिर तोलो, अपने लिए यह अमल की बात हम सब लिखते हैं। कोई भी बात किसी को भी कहें, इवन बच्चे को, इवन शोहर को, इवन किसी साथी को, सोच के बार बार फिर बात करूंगी। कब बोले? एक वो इंग्लिश की कहावत भी है ना कि तब बोलो जब तुम्हारे पास खामोशी से खूबसूरत लफ्ज़ हो, यानी खामोशी सबसे खूबसूरत है। अगर खामोश रहने से अच्छी बात है तो करो। और आप कभी सोचे तो सही, हम हर वक्त बोलते गए, टुक 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 लगा ही रहता है। आप एक दिन में ज़रा अपने पास कहीं रिकॉर्डर खोल दें ऐसे बगैर किसी को बताए, और आप होने तो जो रिकॉर्डिंगें हो रही हैं, फिर ज़रा खाने की टेबल पे चलाएं उसको, रिप्ले करें, एक दूसरे को मुंह नहीं दिखा सकेंगे हम। इतना हम बेकार बोलते हैं, इतना बेतुक्का बोलते हैं, अल्लाह ताला हमारी इसलाह कर दे। नुकसान क्या होता है ज़्यादा बोलने का? फरमाया दरअसल ये शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश करता है। हकीकत यह कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हारे हाल से ज़्यादा वाकिफ़ है, वो चाहे तो तुम पर रहम करे और तुमको अजाब दे दे। और ए नबी, हमने तुमको लोगों पर हवालेदार बना कर नहीं भेजा, यानी आप लोगों की सू ना लें कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, कैसे कर रहा है। व रब्बुक आलमु बिमन फिस समावाति वल अर्दी वलकद फद्दलना बादन नबीयीन अला बादे वातैना दाऊदा ज़बूरा। तेरा रब ज़मीन आसमान की मखलूकात को ज्यादा जानता है, हमने पास पैगम्बरों को पास से बढ़कर मरतबे दिए और हम ही ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। फजीलतों की भी बात इस सूरत में बार बार देख रहे हैं। तो ये अल्लाह की बांट है, दीन की कोई नेमत किसी को ज़्यादा दे, दुनिया की ज़्यादा दे, शक्ल अच्छी दे, काम अच्छा दे, पैसा अच्छा दे, औलाद अच्छी दे, बस अपने आप को दूसरों से बेनियाज कर ले और बिल्कुल इस बात पे रहें कि मेरे मालिक जो तूने मुझे दिया वो अच्छा है। देखिए बाज़ दफ़ा हम इतने शक्ल कॉन्शियस हो जाते हैं, आज के दौर का एक बहुत बड़ा फितना क्या है कि हम अपनी शक्लों से राज़ी नहीं, हम अपने कद से राज़ी नहीं, हम अपने मोटापे से राज़ी नहीं, हमें कभी कहीं से मोटा होना है, कहीं से पतला होना है, हर वक्त गम हम बनकर। आज आप देखिए करोड़ों डॉलर सिर्फ इस चीज़ पे लग रहा है कि इंसान अपने आप को कैसे रिफर्बिश कर ले। रहेंगे तो वही सेहत होनी चाहिए, अल्लाह से राज़ी रहें, कहें आईने में खड़े होकर, अल्लाह जैसा तूने मुझे बनाया किसी को नहीं बनाया, अल्लाह तेरी शान है, बस अब मुझे अच्छे काम करने वाले बना दे। अल्लामा कमा हसन तखल्की फ़हसन हुलूकी। और तकाबुल में रहना और मॉडल्स को देखना और कमर को नापना और बाजुओं को नापना, इसी चीज़ों को रहने के बजाय तो हमें करना क्या चाहिए, हमें अपनी नेकियों को नापें, अपने नामे अमाल को छांटते पटकते रहें। क्योंकि जब बहुत सेल्फ कॉन्शियस इंसान हो जाता है ना, तो वो फिर दीन की तरफ भी नहीं आता, नमाज़ें नहीं इंसान पढ़ते। कई लोग आपको पता है कि कई ऐसी नेकियां जो मैं यहाँ बताना नहीं चाह रही, वो सिर्फ इस सोच से नहीं करते कि मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा, फिर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं तुम अपने आप को रब की नज़रों से तो देखो, तुम्हें रब ने कितने प्यार से बनाया है। कुलिदुल्लज़ीन ज़अमतुम मिन दूनिही फ़ला यम्लिकूना कशफ़ दुर्री अन्कुम वला तहवीला। इनसे कहो पुकार देखो इन माबूदों को जिनको तुम अल्लाह के सिवा अपना कारसाज समझते हो, वो किसी तकलीफ़ को तुमसे हटा नहीं सकते ना बदल सकते हैं। जिनको ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने रब के हजूर रसाई हासिल करने का वसीला तलाश कर रहे हैं कि कौन इसके करीब तर हो जाए, और वो इसकी रहमत के उम्मीदवार हैं और इसके अजाब से खाइफ हैं। यहाँ वसीले की बात हुई, पीछे सूरत मायदा में भी बात हुई थी। हकीकत है कि सबसे खूबसूरत वसीला इंसान के अपने नेक अमल है। कोई ऐसा नेक अमल कीजिए और फिर अल्लाह से कहें अल्लाह आपके लिए कर रही हूँ, बस कबूल कर लें। कोई नेकी छुपा के करें और किसी मुश्किल में, वो जैसे छुपे हुए नोट की जब कदर आती है ना, जब वो निकल आता है कहीं से छुपा हुआ, इस तरह इखलास के साथ नेकियां करें। मैंने एक छोटा सा वाक्य पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, सच्ची होगा या क्या, बहरहाल एक कहानी थी किसी की, जिसका खुलासा क्या था कि एक शख्स जिनको सारी ज़िंदगी उन्होंने बीमार देखा, बिस्तर से भी नहीं उठते थे, लेकिन कुछ अरसे बाद देखा तो वो खुद चल फिर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहानी क्या सुनाई कि मैं मेरी खिदमत के लिए किसी ने एक बच्चे को गांव से बुलाया, तो वो बच्चा जो था बहुत ही मस्कीन सा लग रहा था। तो मैंने एक दिन उस बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो? तो कहने लगा कि सैलाब में मेरे माँ बाप मर गए, तो मुझे इधर जॉब भेज दिया और बस दो वक्त की रोटी और कपड़ों के लिए रखा गया। कहते मेरा दिल बड़ा दुखा, तो मैंने उसको क्या कहा कि तुम पढ़ना चाहते हो? उसने कहा मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। कहते मैंने उसको शहर के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं उस दिन बिस्तर से उठना, और मुझे कई लोग उठाते थे, लेकिन उस दिन ज़रा सी कोशिश की तो मैं बिस्तर से उठ गया। और कहते हैं कि मैं किसी की मदद के बगैर टॉयलेट में जा ही नहीं पाता था, लेकिन उस दिन मैं अपनी कोशिश, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे जिस्म की गिरें क्यों खुलती जा रही हैं। खैर एक दो दिन ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक होने लग गया। अब मैं सोचूँ मैंने कोई दवा नहीं खाई, कुछ नहीं की, क्या किया? उसके बाद कहता है कि मुझे समझ आया कि एक ही चेंज आई है मेरी ज़िंदगी में, मैंने अपने ऊपर एक काम ले लिया कि एक यतीम बच्चे की किफ़ालत ज़िम्मे ली है। कहते मैंने अपने मैनेजर को बुलाया, मैंने कहा जो ऐसे पांच लड़ बच्चे और लेकर आओ जिनका कोई नहीं है देखने वाला। मैंने उन पांचों को पढ़ने लिखने पे लगा दिया और किस्सा मुख्य सारी कहानी का मकबाद। कहता है कि आज मैं ये सब ऐसे इसलिए हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया। तो उसका मैसेज क्या था कि जो लोग हर वक्त बीमार हैं और जिनको बिस्तर से नहीं उठना पड़ रहा और कुछ भी, वो अपनी ज़िंदगी को कोई मकसद दें। बेमकसद इंसान जो है ना, वो बेकार होता है। तो कोई बड़ा काम करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि अल्लाह ताला खुद ब खुद आपको हिम्मत भी देगा और ताकत भी देगा, वरना जो ज़िंदगी के वक्त है वो तो चलते जाएंगे। तो ये नेकियां जो खालिस अल्लाह के लिए की जाए ना, ये बेहतरीन वसीला है। अल्लाह ताला हमें ऐसी नेकियों की तौफीक अता फरमाए। और वो लोग जो अल्लाह के करीब कुर्ब चाहते हैं वो क्या चाहते हैं? उसकी रहमत के भी उम्मीदवार हैं और उसके अजाब से भी खाइफ हैं। और हकीकत ये है अल्लाह ताला का अजाब कैसा है, इन्ना अजाब रब्बिका काना महज़ूरा। तेरे रब का अजाब तो है ही डरने के लायक। दुआ करें अल्लाह ताला हमें अपने अजाब की फिक्र लगा दे, डर लग जाए। आज तुम हंसते हैं, मैं सोचती हूँ कुरान पढ़ते हुए हंसे। हम किसी फिल्म को देखते हंसते हैं, हम कभी लेक्चर में बैठे हैं तो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, या बाज़ वक्त की कोई अपनी कोई तकलीफ़ हमें बताता है तो हम हंसने लगते हैं। हमारे कल्चर में तो अब देखिए कुछ चलता चलता गिर पड़े लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। है इससे भी ज़्यादा ना समझी की बात। तो संजीदगी जो होती है ना, वो इंसान के अंदर हकीकत पसंदी लाती है, उसको अल्लाह की भी पहचान होती है और अपनी ज़िंदगी का मकसद भी समझ आने लगता है। फिर इसके बाद फरमाया, वाइम मिन करियतिन इल्ला नहनु मुहलिकुहा, और कोई भी बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम क़यामत से पहले हलाक ना करें या सख्त अजाब ना दें। ये तो अल्लाह के नविश्ते में लिखा हुआ है और हमको निशानियां भेजने से नहीं रोका मगर इस बात ने कि इनसे पहले के लोग इनको जुटला चुके। चुनाचे देख लो, समूद को हमने एलानिया ऊँटनी ला कर दी और उन्होंने इस पर जुल्म किया। हम निशानियां इसीलिए लाते हैं कि लोग इनको देख कर डरें। ये बड़ी अहम बात है। अल्लाह ताला की तरफ से कुछ निशानियां आती हैं ना, कभी जलजले, कभी सैलाब, कभी तूफान। कल के दौर की बातें, ऊँटनी निकल आई, तूफान नूह आ गया, ये क्यों आती हैं? ताकि लोग डरें। अल्लाह ताला हमें अपना डर दे दे। डांट होती है, अल्लाह ताला कहते हैं समझो, अकल करो, होश करो, समझो इन बातों को। हम निशानी इसलिए तो भेजते हैं कि लोग इनको और देखे देख कर डरें। याद करो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे कह दिया था। कहाँ कह दिया था? कुरान में। क्या? कि तेरा रब लोगों का इहाता करने वाला है, कि इसने इन लोगों को घेर रखा है, और जो कुछ हमने अभी तुमको दिखाया, इसको और इस दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई, हमने इन लोगों के लिए बस एक फितना बनाकर रख दिया। हम इन्हें तंबीह पर तंबीह किए जा रहे हैं मगर हर तंबीह इनकी सरकशी ही में इजाफा किए जाती है। कुरान की आयतों में जब जहन्नम के कुछ दरख्तों का जिक्र हुआ तो अबू जहल और कुछ साथियों ने मजाक उड़ाया। कहते हैं, एक तरफ कहते हैं जहन्नम में आग होगी, फिर कहते हैं दरख्त होंगे, देखो जरा, हा हा हा। तो आज आप देखिए कि माइक्रोवेव को देख लें, आग होती है उसमें, तो आप रखते हैं चीज़ पकती है कि नहीं पकती? आप और मैं क्या जानते हैं कि जहन्नम कैसी होगी? तो लिहाजा कभी कुरान की किसी आयत को पढ़कर कोई ऐसा अगर दिल में ख्याल भी आए तो उस बेला पढ़ने की ज़रूरत है। अब यहाँ से आगे इबलीस और आदम का किस्सा कदरे तफसील से है। यहाँ आपको शैतान का इंसान को बहकाने का तरीका दिखेगा, आप कह सकते हैं तरीका वारदात। इसको भी मैं पूरा पढ़ूंगी और फिर इंशाल्लाह इकट्ठी इस पर हम बात करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ कुलना लिलमलाइकति इस्जुदू लिआदम फसजदू, और याद करो जबकि हमने मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया। काला अस्जुदु लिमन खलकता तीना, अकल इस्तेमाल कर रहा है, इसने कहा क्या मैं इसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया? नोट कीजिएगा, अकल अल्लाह के हुक्म के आगे इस्तेमाल की। फिर वो बोला, देख तो सही, क्या ये इस काबिल था कि तूने इसको मुझ पर फजीलत दी? आदम दुश्मनी भी है और चर्ब जुबानी भी है, अल्लाह के आगे बोल रहा है, अगर तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं इसकी पूरी नस्ल की बेहकुनी कर दूँ। चैलेंज, गुनाहों के लिए मोहलत मांग रहा है, और आपको कुछ हुआ इसको सुनकर? आपका मेरा दुश्मन है, अल्लाह को कह रहा है मैं आदम के बच्चों को खा जाऊँगा, बस थोड़े ही लोग मुझसे बच सकेंगे। कौन बचेंगे? इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, खालिस बंदे, पिछले बारे में भी था। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा तू जा, अब इनमें से जो भी तेरी पैरवी करें तुझ समेत इन सब के लिए जहन्नम ही काफ़ी है। अल्लाह डरता थोड़े इबलीस से, कहा जाओ कर लो, तुम सब के लिए भरपूर जजा जहन्नम है, तो जिस जिस को अपनी दावत से फिसला सकता है फिसला ले। वस्तफ़िज़ मन इस्तता तमिन हम बिसौतिक, कैसे कर? इन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला, माल और औलाद में इनका सांझा लगा दे, और इनको वादों के जाल में फांस, और शैतान के वादे एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं है। पहले से अल्लाह ने बता दिया और पूरा कॉन्फिडेंस है अल्लाह को, किस बात का? कि इन्ना इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तान, यकीनन मेरे बंदों पर तुझे कोई इक्तदार हासिल न होगा। वकफा बिरब्बिका वकीला, और तवक्कुल के लिए तेरा रब काफ़ी है। यहाँ देखिए इस किस्से में बहुत सारी बातें। शैतान इंसान को कैसे वरगलाता है, उसका इंसान को फांसने का एक तरीका है। सबसे पहले इंसान को अल्लाह का कुफर करने का हुक्म देता है, बी एथियस्ट, देर इज़ नो गॉड, देर इज़ नो गॉड। अब जब इंसान इस फंदे से बच जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह तो है, तो फिर क्या करता है? शिर्क। जब एक इंसान शिर्क में मुलव्वस होने लगता है तो उसको आके और बहकाता है और बहकाता है। कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं हम तुम्हारे कहने पे शिर्क नहीं करते, ये गलत है। जब शिर्क से एक इंसान अपने आप को बचा लेता है अल्लाह की तौफीक से, तो उसके बाद कबीरा गुनाह, कबायर में मुब्तला करता है, पुरानी शराब नई बोतलों में बेचवाता है। जब एक इंसान कबीरा गुनाहों से भी बचता है कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, तो बिदअत, दीन के नाम पर नित नए काम करवाता है। ऐसे काम करवाता है जिससे एक इंसान नेकी समझे लेकिन वो नेकी होती नहीं है। फिर उसके बाद आप देखिए, जब लो बंदा इससे भी बच जाता है तो फिर उसको क्या करता है, कबीरा गुनाहों को सगीरा बना के दिखाता है। नहीं, ये तो छोटा सा गुना है, ये तो सब करते हैं, ये तो आज के दौर का गुना है। यानी उसको क्वेश्चनिंग सिखाता है, रीजनिंग सिखाता है। फिर इसी तरह से आप देखिए, उसके बाद नेक लोगों की गलतियाँ दिखवाता है, कहता है ये नेक बहुत बनते हैं, ये मौलवी, तुमने इनको देखा है, तुमने ये सुना है, इस तरह। और आप देखिए कि कभी किसी दीनदार की कोई बुराई भी सामने आए ना, तो स्कैंडल नहीं बनाना चाहिए। आज तो एक बात करें, फिर देखें यूट्यूब पे उसके खिलाफ क्या कुछ बोलते हैं। आप देखिए, डॉक्टर कभी बीमार नहीं होते। अब आप कहें जी मैं तो डॉक्टर से इलाज नहीं करूँगी क्योंकि इनको भी कभी बुखार हो जाता है, इनको भी खांसी होती है, मैं भी नहीं करूँगी। नहीं, तो एक दीन की बात बताने वाला, वो रूहानी मुआलिज होता है, अगर अगर उसमें भी किसी को कोई बुराई दिखे तो ये कोई अदब नहीं जो आज के दौर में उम्मत ने पकड़ा हुआ है, कि जिस दीनदार को पकड़ा उसके चर्चे शुरू कर दिए। शैतान करवाता है ये काम, वो कहते हैं दीनदारों को बुरा बनाओ ताकि दीन खुद ही बदनाम हो जाए। और याद रखिए कि फ़राइज़ से गाफिल करके मुबाह कामों में लगा देगा, बड़ी नेकी से हटाकर छोटी नेकियों पर डाल देगा। बाज़ दफ़ा 100 नेकियाँ कराता है ताकि गुनाह का रास्ता हमवार हो जाए, या नेकी करने के बाद रियाकारी दिखा देगा, और बाज़ दफ़ा तो फजर के लिए उठाने आ जाता है उस शख्स को, क्योंकि जिसकी छुट गई फजर उसने इतना रोना है कि उसको अल्लाह ने नमाज से ज़्यादा अजर दे देना है। हर मुमकिन तरीके से आपको मुझे बहकाता है, ये हमारा दुश्मन है। अल्लाह के नबी ने कहा कि इंसान की पैदाइश के वक्त शैतान आ जाता है वहाँ, जैसे नानियाँ दादियाँ टोकरी लेके पहुँचती हैं ना, इस तरह शैतान भी पहुँच जाता है, कचोक्का लगाता है, ये जो रिब होती है ना इसके अंदर कचोक्का लगाता है, और फरमाए सिवाय मरियम के बेटे ईसा को पर्दे के साथ चुक्का लगाया, क्योंकि उनके साथ उनकी नानी की दुआ थी। इसीलिए कहा कि शौहर बीवी जब भी मिलें तो दुआ कर लिया करें कि अल्लाह मजन्निबन शैतान व जन्निब शैतान हमार रज़क़ताना, कि अल्लाह हम दोनों को, और अगर हमारे नसीब में कोई औलाद है तो उनको शैतान से बचाना, कि इस ताल्लुक़ में भी हम किसी हद को ना क्रॉस कर जाएँ। अब आप बताइए, आज कितने पेरेंट्स हैं जो ये दुआएँ करते हैं, और फिर आज औलादों की बेदीनी या उनके भटकने और उनके शरारती होने का दुख किसको है, क्यों है? हम वो प्रिकॉशंस नहीं लेते जो अल्लाह और उसके रसूल ने दी। डॉक्टरों की प्रिकॉशंस पे तो जान निकल जाती है, एक एक इंजेक्शन लगाने के लिए हम अपने बच्चों को दागदार कर देते हैं, लेकिन आप देखिए ये सारी चीज़ें हमारे अपने लिए हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए, यहाँ शैतान की आवाज़ की बात हुई, इस पे हर वो आवाज़ जो हक़ के ख़िलाफ़ उठती है, और इस पे उलमाए कराम और असलाफ जो सहाबा थे नबी सल्लम के करीब, उन्होंने बताया कि शैतान की आवाज़ से मुराद गाना बजाना है, सांस और आवाज़। इस पे चंद हदीसें ही सुन लें तो बहुत समझ आ जाएगी बात। आपने फरमाया घंटी शैतान का बाजा है, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। ये जो कपड़ों में घुंघरू लगते हैं, जूतों में, परांदों में घुंघरू, ये दुरुस्त नहीं है। फ़ोन में भी वो घंटियाँ ना इस्तेमाल करें जिसमें म्यूज़िक हो, वरना शैतान आ जाएगा। फिर इसी तरह आपने फरमाया बेशक मेरे रब ने मेरी उम्मत पर शराब, जुआ और जौ की शराब, सारंगी और आलात मौसीकी यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को हराम कर दिया। ये सिलसिला सहीहा की रिवायत है। फिर आपने फरमाया इसी तरह से जो कहा कि शैतान उनको हर तरह से बहकाएगा, किस तरीके से शैतान फजूल खर्ची करवाता है, खून पसीने की कमाइयों को ज़ाया करवाता है। फिर आप देखिए कि इसमें हमने पढ़ा कि शैतान हमारे माल और औलाद में हिस्सेदार बनता है। सच बताइए, हलाल कमाई भी कितनी कमाइयाँ शैतानी चीज़ों में जाती हैं, और अपनी औलाद के नाते से देख कितने लोग हैं जो बाशऊर तरीके से आज अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इन चीज़ों से बच सकें, क्योंकि आज के दौर में बहुत बड़े फितने हैं। और शैतान के वादे के हैं जो कहा गया झूठे हैं, गुनाहों के साथ मगफरत कर लो, गुनाह हज कर लेना, उम्रा कर लेना, नाफरमान हो कोई बात नहीं, अल्लाह तुमसे राज़ी होगा, डोंट वरी कुछ नहीं होता, सब करते हैं, इस तरह की उल्टी सीधी बातें हमें बता देता है। और होता क्या है कि हम फिर शैतान के हाथों में तरने वाला बनते हैं, ये हमारा दुश्मन है। अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखें, खालिस बन जाएं, शैतान प्रूफ हो जाएंगे, और अल्लाह करे कि शैतान हमसे मायूस हो जाए। आपको पता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर शैतान भाग जाता था। दुआ करें हमारा भी ईमान इतना पुख्ता हो जाए कि शैतान हमें देखकर भाग जाए। फिर इसी तरह से बड़े बड़े अजर छुड़वा कर छोटे छोटे काम करवाता है। अल्लाह ताला हम सबको ये सारी बातें बताकर इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि दोस्त और दुश्मन का फ़र्क पहचानो।